નમઃ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત્ત ભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતરે.
31વી ગાથા ચાલ રહી હૈ. દ્રવ્યેન્દ્રિયો ભાવેન્દ્રિયો ઓર ઇન્દ્રિયો કે વિષયભૂત પદાર્થો કો કિસ પ્રકાર જીતના. આત્મખ્યાતિ ટીકા કે આધાર પર યહ વાત ચાલ રહી હૈ. ઇસમે કલ દ્રવ્યેન્દ્રિયો કો જીતને કી બાત હુઈ થી. દ્રવ્યેન્દ્રિયા કૈસી હૈ? શરીર પરિણામ કો પ્રાપ્ત હૈ, મને શરીર હૈ, જડ હૈ. ઓર ભગવાન આત્મા કૈસા હૈ? ચૈતન્ય શક્તિ કા અખંડ પિંડ હૈ. તો દોનો આમને સામને હો ગયે ના, એક જડ હૈ ઓર એક ચૈતન્ય હૈ. એસે જડ ઓર ચૈતન્ય કે ભેદાભ્યાસ કી પ્રવીણતા સે ઓર અપના જો ચૈતન્ય સ્વભાવ હૈ ઉસકે અવલંબન કે બલ સે એ દ્રવ્યેન્દ્રિયા મેં નહીં હું એસા નિર્ણય કરકે ઉનસે ભિન્ન જો ભગવાન આત્મા હૈ ઉસકી અનુભૂતિ પૂર્વક ઉસમે અપનાપન સ્થાપિત કરના, इसका नाम है દ્રવ્યેન્દ્રિયો કો જીતના. અબ ઇસ બાત કો મેં રિપીટ નહીં કરૂંગા ક્યોંકિ ફિર વો લંબા હો જાયેગા નિતર, ઇસલિયે અબ મેં ભાવેન્દ્રિય કી બાત કરતા હું. ભાવેન્દ્રિય ક્યા હૈ? થિરુપસમ જ્ઞાન. થિરુપસમ જ્ઞાન માને આજ કી ભાષા મેં કે જો હમે પ્રગટ રૂપ સે જ્ઞાન હૈ, ઇસે શાસ્ત્રીય ભાષા મેં થિરુપસમ જ્ઞાન કહેતે હૈ. જબ યહ ઇન્દ્રિયો કે માધ્યમ સે ઉપયોગ મેં આતા હૈ તો ઇસકે ખંડ ખંડ હો જાતે હૈ, ટુકડે ટુકડે હો જાતે હૈ. ક્યું? ક્યુંકિ આંખ સે જાનેગા તો અકેલે રૂપ કોઈ જાનેગા. દેખો વહાં વસ્તુ અખંડ હૈ, જિસે જાનના હૈ પ્રતિકલ હૈ ના. માન લીજિએ આપ બજાર સે એક આમ ખરીદ કે લાયે તો વો આમ મેં રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ અખંડ હૈ કે નહીં? ઉન્હે અલગ કિયા હી નહીં જા સકતા. ઓર યહાં અંદર મેં આત્મા ઉનકો જાનને વાલા વો જ્ઞાન હૈ, વો ભી અખંડ હૈ. અબ જબ ઇન્દ્રિયો કે માધ્યમ સે જાનને કા કામ હોતા હૈ તો ટુકડે ટુકડે હો જાતે હૈ. તો એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કા એ દોષ હૈ કે જો અંદર મેં અખંડ જ્ઞાન હૈ વો ઉસકો ખંડ ખંડ કરકે જાનતા હૈ. અબ હમે અખંડ આત્મા કો પ્રાપ્ત કરના હૈ, इस खंड खंड ज्ञान से अखंड आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है. इसलिए जो ज्ञान का खंड खंड पना है इसे भी इंद्रिय कह के और गे में डाल दो और उनसे भिन्न भगवान आत्मा वो एक अखंड चैतन्य है. अब ऐसे भेदाभ्यास के बल से देखो द्रविंद्री जड़ थी इसलिए उसके विरुद्ध चैतन्य स्वभाव को लिया था और भाव इंद्रिय खंड खंड है, चेतन तो है जड़ तो नहीं है ना. तो वही हथियार यहां काम क्यों नहीं आ सकता है राजमल जी? क्योंकि हम कहेंगे कि आत्मा तो चैतन्य है और भाव इंद्रिया के देवी चैतन्य है तो भेद कैसे जाने? फिर तो एकता लगेगी या नहीं लगेगी? क्यों? यदि भेद जानना हो तो ऐसी चीज जानना चाहिए जो भाव इंद्रिय में नहीं हो. तो भाव इंद्रिय में चैतन्य बना तो है लेकिन अखंडता नहीं है. तो अपने भगवान आत्मा के अखंड स्वभाव को पकड़ना तो जाकर के भाव इंद्रियों से पृथकता भाषित होगी. देखो जैसे अपन समाज में कुछ लोग एकता चाहते हैं, कुछ लोग फूट करना चाहते हैं. तो वो तत्व दोनों विद्यमान है. जो फूट करने वाले अलग बातों को प्रमुखता देंगे और एकता वाले अलग को प्रमुखता देंगे. क्यों? એકતા વાલે કહેંગે દેખો ભૈયા તુમ દિગંબર હમ દિગંબર, તુમ જૈની હમ જૈની, તુમ વ્યાપારી હમ વ્યાપારી, ક્યું તુમ પુરુષ હમ પુરુષ. ઓર ભેદ ડાલને વાલે કહેંગે ભાઈ હમને તુમને ક્યા, તુમ ગોલા લા રહે હમ પરવા, હમ તુમ એક ક્યાં હો સકતે હૈ, તુમ મુમુક્ષુ હમ. ભેદ ડાલના હો તો એસી એસી બાતો ઉઠાઓ. ઉઠાતે હૈ ના લોગ, જબ ભેદ કી બાત હોતી હૈ તબ એસી હી બાત હોતી હૈ. અભી લંડન મેં તત્વાસ સૂત્ર કા વિમોચન હુઆ થા, એ અંગ્રેજી મેં ઉસકા અનુવાદ કરાયા ડાક્ટર નથમલ તાંડિયા ને કિયા ઓર વહાં ઉસકા વિમોચન કરાયા ગયા. તો કમ સે કમ ઉસમે 5 લાખ રૂપિયા વિમોચન મેં ખર્ચ હુઆ હોગા. આપ સોચ ભી નહીં સકતે હૈ કે તુને 5 લાખ વિમોચન મેં કર દિયા, हम 5 लाख में 1 लाख तत्वासु छाप करके सारी दुनिया में फैला देते। क्या मैं भी उस फंक्शन में शामिल था, तो वहाँ अभी चल शेखर जी का मामला बहुत जोरदार। तो दिगम्बर सीतम्बर आपस में मिलते हैं तो बात तो होती होती है, तो मेरी उन नथुन तांतिया से बात हुई, विद्वान है सीतम्बरों के बड़े, तो उन्हें साहब क्या हो रहा है डॉक्टर साहब। मैंने कहा देखो हो तो बहुत गड़बड़ रहा है, तो कुछ करना चाहिए, यदि हमें झगड़ा खत्म होके एकता हो मिल बैठ करके तय कर ले। अरे आखिर तो सकल संवेद तो अनादि का है, और अनादि का है तो अनादि है जब जैनी है सभी का ही है ना। अब बीच में कब किसके कब्जे में आ गया, कब किसके कब्जे में चला गया, क्यों इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आखिर तो भगवान महावीर के भक्तों का है ना, क्यों और अब पर्वत को किसे माथे पर बांध के ले जाना है। सवाल तो दर्शन पूजन करने और व्यवस्था का ही है ना, तो सब कंधे से कंधे मिलाकर मिल बांट के करें, कोई ऐसा रास्ता खोजो। सारे मिलने के नहीं है तो उनको तो जो इष्ट नहीं है ना समझौते की बात, क्योंकि उनके तो कब्जे में है, वे काय को तुमसे समझौते की बात करें। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि देखो पंडित जी एक बात कहूंगा, बोलो बोलो आप क्या कहते हैं। झगड़े मिटते हैं, कोई मिटा सकता है। भरत और बाहु को भी लड़े थे और आदिनाथ बैठे थे केवल ज्ञान लेके, उनने नहीं मिटा पाया, कौन मिटा सकता, इसने माथा नहीं माना, चलने देना। जिनवाणी में से भी जब नहीं करना हो समझौता तो क्या रास्ता निकालता है। हम कौन होते हैं कराने वाले, हम तुम तो विद्वान हैं, ये तो केवल ज्ञानी बैठे थे, और हमारे ये कौन होते हैं लड़ने वाले, उनके तो सगे बेटा थे और उन बेटों को वो राज उनने ही दिया था। क्यों वो हो नहीं सकता, माता पत्नी करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना, मैंने वो ही तर्क हम उधर को ढला देते कि नहीं ढला देते हैं। तो ऐसे ही देखना कि तुम पहले नक्की करो कि तुम्हें एकता इष्ट है कि अनेकता इष्ट है, फिर वैसे ही तर्क निकालो। तर्क तो दो ही तरह के मिल जाएंगे। क्यों तो कहते हैं कि बोलो अब तुम्हें ये भावेंद्री से एकता करनी है। बात चल रही थी कि अपन को क्या इष्ट है ये नक्की करो पहले, ये भाव इंद्रियों से एकता इष्ट है कि भिन्नता इष्ट है। एकता इष्ट होए तो भाई आखिर अपनी ही पर्याय है, होती है तो क्या होता है, खोटा पैसा, खोटा बेटा, खोटा दाम, समय पड़े पे आवे काम, ये अच्छा बेटा होगा ना, कहीं IAS ऑफिसर बन गया तो तुम्हारे क्या काम आने वाला है, चला जाएगा दिल्ली मिल्ली कहीं अमेरिका अमेरिका कहीं भी भाग जाएगा। ये अच्छे बेटे किसी के काम नहीं आते हैं, जो बिना पढ़ा लिखा कहीं कहीं काम नहीं होगा, इसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, वो अंत तक तुम्हारे पास रहेगा और तो सेवा तुम्हारी बोई करेगा, अंत में लकड़ी तुम्हें बोई देगा। वो तो अमेरिका वाला तो आ ही नहीं पाएगा, जब तक चिट्ठी मिट्टी जाएंगी आएगा करेगा, तो तुम राख भी गंगा जी में पहुंच गई होगी। और अच्छा पैसा होता है तो चल जाता है, और खोटे को कोई लेता नहीं है ना, तो पड़ा रहता है ना, तो संकट के समय में वही काम आता है, आधे पर्दे में चले लेकिन चलता तो है कि नहीं है। तो खोटा पैसा, खोटा बेटा, खोटा दाम, समय पड़े पे आधे काम, एकता करनी हो तो ऐसी बात करो। आखिर ये थिरुक्षम भाव, आखिर ये राग भाव, खोटा सही लेकिन है तो अपना ही बेटा ना। क्यों और अपना अपना बेटा यदि जंग से पेशाब कर ले तो जंग काट के थोड़ी फेंकी जाती है ना, उसे उठा के फेंका जाता है। क्यों एकता करनी हो तो ये बातें बढ़िया है। क्यों और भिन्नता करनी हो तो हम तो सच्चाई के साथी हैं, हम कोई पाप के साथी थोड़ी है, हत्या के साथी, हत्यारों के साथी थोड़ी है, बेटा है तो है। क्यों की रक्षा जाए जाए तो जेल में जाए, मैं अपनी मुख्यमंत्री बना क्यों छोड़ू। समझ में आया ना, एक मिनट में भेद विज्ञान हो जाता है ना, वह एक मिनट में अपना हो जाता है। नक्की करो कि क्या करना है, ये इंद्रियों से भेद ज्ञान करना है ना। ये गाथा तो भेद ज्ञान की गाथा है कि नहीं, क्योंकि इंद्रियों को यहाँ जीतना है। तो इंद्रियों के प्रति कोई भी अपनेपन का और कोमल परिणाम तेरे हृदय में न जग जाए, अन्यथा ये जीतने का काम में तू सफल होगा नहीं। तो वो भी चेतन है, तू भी चेतन है, इसको भूल जा। तू तो ये बोल कि तू तो अखंड ज्ञानमय है और ये इंद्रियां तेरे ज्ञान को खंड खंड कर डालती हैं। इसलिए अखंड ज्ञान चैतन्य स्वभाव से खंड खंड ज्ञान रूप जो भावेन्द्रियां हैं उनसे आत्मा को भिन्न जानना और उन पर से दृष्टि हटाकर आत्मा में अपनापन स्थापित करना, इसका नाम भावेन्द्रियों को जीतना है। देखो एक ध्यान रखना, मैं इस बात को बहुत बार बार कह रहा हूँ कि अपने में अपनापन स्थापित करना यहीं पर छोड़ देता हूँ, आगे ये नहीं कहता हूँ कि अपने में जमना रमना, क्योंकि ये चौथे गुण स्थान की बात है, ये जितेंद्रिय जिन है इसे श्रद्धा से संबंधित बात है, वो आगे गुण स्थान की बात, वो भाव भावक भाव के अभाव रूप जो 32वीं गाथा में दूसरे नंबर की निश्चय स्थिति होती है वो उसमें आएगा, क्यों? और तीसरी तो सब उपशम श्रेणी में आएगी, सबक श्रेणी में भाव भावक के भाव के अभाव पूर्वक जो होती है वो बारहवें गुण स्थान तक जाएगी। यदि वो ये सारा काम यहीं निपटा दूंगा तो दो गाथाओं का फिर क्या होगा और दो प्रकार की स्थितियों का क्या होगा, ख्याल में आएगा नहीं? इसलिए मैं यहीं छोड़ देता हूं, जब तक ध्यान नहीं है दिलाऊंगा तो आपको नहीं आएगा ख्याल में क्या, पर अपनापन स्थापित हुआ कारण है उस त्रिकाली ध्रुव में और राग में नहीं हूं, फिर भले ही उपयोग बाहर में रहे तो भी वो जितेंद्रिय जिन है, तो आत्मा की लीनता की शर्त तो जित मोह जिन में है और निरंतर लीनता की शर्त तो तागाधिक के अभाव की शर्त तो तीसरी स्थिति में है, भाव भावक भाव के अभाव की। ये भाव भावक भाव क्या है, उसका अभाव कैसे होता है, ये थोड़ी देर बात करूंगा समय रहेगा तो। अभी भावेंद्रिय की जीतने की बात चल रही ना, तो भावेंद्रिय को जीतने का अर्थ क्या हुआ, फिर एक दफे कहता हूँ, पढ़ देता हूँ इसमें से। देखो भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है, ऐसी भावेंद्रियां, भावेंद्रियों का स्वरूप क्या है, ज्ञान को खंड खंड करती हैं, क्योंकि अपने अपने विषयों में व्यापार करती हैं, इसे अलग अलग कर देती हैं। प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति से, तेरी प्रतीति में आ रही ना अंदर में ये मैं हूं, अखंड एक चैतन्य शक्ति से के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना सोया भावेंद्रिय का जीतना हुआ। पर जानने तक खत्म कर दिया ना, उसे हटकर इसमें जमा लीन हुआ, ये बात नहीं ली कि नहीं ली बाबूलाल जी साहब? अभी इसमें ध्यान दो, अब डॉक्टर साहब ने गाने वाने को तो मना कर ही दिया है, पुण्य के उदय से समझना, क्योंकि एक रंग जो अपन को लगा रहता है ना वो मरते दम तक टूटता नहीं है और वो ही हमारे अकल्याण करने में समर्थ हो जाता है। कहा भगवान की भक्ति के रंग को आप अकल्याण करने वाला कहते हैं ना, नहीं कहता हूं, भगवान की भक्ति की तो प्रकरण ही चल रहा है, इन निश्चय स्थिति की बात है कि नहीं है, लेकिन नाराज मत होना, उसमें क्या है, केसरिया केसरिया रंगवा दो रंगवा दो, बसंती 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 से क्या भाव है, क्या भक्ति है, क्या लेना है क्या देना है, नाराज मत होना, सच्ची बात कहता हूँ मैं, सोचना एक जगह पवित्र हृदय से, चतुर्दशी का दिन है, अंतिम दिन है, क्या है उसमें, काय की भक्ति, किसकी भक्ति, केसरिया चावल रंगवा दो, उसमें आदिनाथ की भक्ति, आदित्यनाथ की, पार्श्वनाथ की, केसरिया रंग की है, मैं आपसे नहीं कहता हूँ, मेरे जयपुर के कैसेट सुनना, मैं अपने विद्यार्थियों को कितना कहता हूँ, बहुत कहता हूँ, ये ठीक है, ये भी अच्छी है, एक चीज है चलता है, वास्तव में तो निश्चय भक्ति है ना, व्यवहार भक्ति है, ये तो गला खराब भक्ति है, क्यों कि व्यवहार भक्ति में भी तो भगवान के गुणों का स्तवन होगा ना, ये तो चावलों का स्तवन है, भगवान के सामने पूजा कर रहे, हे भगवान इतना बढ़िया लड्डू खाते ही मुंह में पानी आ जाए, तो भगवान की भक्ति कर रहा है कि लड्डू की, तुम भगवान का भगत है वो लड्डू का भगत है, क्यों लोचन सुरसना ग्रान उर उत्साह के कर तार है, कौन ध्यान सुनना जरा, लोचन माने आंखें, आंखों में उत्साह भर देते हैं, सुरसना माने जवान, इसमें उत्साह भर देते हैं, लोचन सुरसना ग्रान नाक में उत्साह भर देते हैं, और कहां उर हृदय में उत्साह भर देते हैं, कौन लोचन सुरसना ग्रान उर उत्साह के कर तार है, कौन भगवान नहीं, तो फल, ये तो फल की बात है भाई साहब, इतने बढ़िया हैं कि देख के ही आंख को बहुत अच्छा लगे, आंख में उत्साह भर दे और जवान में गीली हो जाए, खाने की इच्छा हो जाए, उसका नाम है रसना में उत्साह भर दे और उसकी गंध इतनी बढ़िया है कि नाक में उत्साह आ जाए, सूंघने का भाव आ जाए और हृदय में उत्साह भर दे कि कितना बढ़िया फल, कितना बढ़िया फल। उसे बढ़िया फल बना बना करके अपन मिट्टी के बना बना के घर में रखते हैं कि नहीं, कि खाने के काम आते हैं कि नहीं, आंख में उत्साह भरते हैं। ये तो भाई साहब फल की पूजा है, नहीं वो तो वो कवि तो बहुत महान कवि है, उसने तो आगे तो सब बात बहुत बढ़िया ली है। मैं तो आपको उदाहरण के लिए दिया, उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम विचार तो करके किसकी बात चल रही है। हमने तो सोची भी नहीं थी कि पढ़ते थे ना पूजा, इसमें सोचा था कि क्या बात चल रही है जी। लोचन सुरसना, मैं एक एक पंक्ति पे घंटों विचार किया है, महीनों घंटों नहीं, तब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ऐसे ही नहीं। और ये जानता हूँ कि एक शब्द भी यहाँ गया निकल गया तो हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, अभी 10-20 साल रहने की तमन्ना है। मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। लोचन सुरसना ग्रान उर उत्साह के करतार हैं, मुंह पे न उपमा जाए बरणी किनकी, इस सरस फल गुण सारे, बहुत रसीले फल हैं गुण के सार, तो फल क्या है ना, तेरी दो पंक्तियां तो फल नहीं गई भगवान का नंबर आया ही नहीं। एक विकल्प मन में आया तो हमने जो लिखे पूजन उसमें जो फल के गुण थे वो तो सब भगवान पर आरोपित करके भगवान की भक्ति की। निर्मल जलसा प्रभु, हे भगवान जैसे नर निर्मल है ऐसे ही तुम निर्मल हो, जैसा जल शीतल है ऐसे तुम भी शीतलता प्रदान करने वाले हो, जैसा जल मल प्रहारी है गंदगी को धोता है ऐसे ही तुम भी राग देश की गंदगी के धोने वाले हो। तो वे सारे गुण भगवान पर आरोपित किए तब भगवान की भक्ति बनी क्या नहीं, इसमें भगवान की बात भी नहीं है फल की बात भी नहीं है, बहुत स्थूल है। अच्छा है, बढ़िया है, समय बन जाता है, वातावरण बन जाता है, मजा आ जाता है, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी शामिल होते हैं, सब करते हैं, हमारे विद्यार्थी भी करते हैं, कोई हम उसे हे समझते हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन भेद तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत गहराई से समझना कोमलचंद जी साहब, भगवान महावीर के अपन पुजारी है ना, और भगवान महावीर यहाँ साक्षात होते और परिश्रम पर्व में आपके यहाँ आ गए होते तो उनके व्याख्यान कितने टाइम होते पंडित जी साहब, बाबूलाल जी साहब 3 टाइम होते और 1 टाइम कितने टाइम लेते वो, 1 घंटा का 1.25 घंटा, 6 घड़ी, 6 घड़ी मैंने 1 घड़ी 24 मिनट की, अब 2 घंटा और 24 मिनट का 1 व्याख्यान होता है भगवान का। अभी सोचा कभी कि नहीं सोचा, सास होने लगा, मैं नहीं कह रहा हूं, 1 प्रवचन 2 घंटा और 24 मिनट का, 3 टाइम प्रवचन करते वो, तो कितना हुआ था 7 घंटा और 12 मिनट, इतना तो वे प्रवचन करते और बाकी तुमको नहाने धोने खाने पीने में लगाते कि नहीं लगाते, और रात में तो कोई काम होता नहीं तो घंटा दो घंटा तुम उसमें लगा देते तो कितना हो जाते 9-10 घंटे हो जाते। सर आपको भगवान की भक्ति और पूजा करने के लिए कितना समय मिलता मुझे बताओ, साक्षात भगवान महावीर ऐसा थोड़ी भगवान तुम उपदेश दो और हम तुम्हारी पूजा चालू करते हैं, हम तुम्हारा उपदेश दो तो 2 काम एक ही साथ तो नहीं होंगे, एक ही साथ आगे पीछे होंगे कि नहीं होंगे, तो घंटे ही 2 घंटे मिलते ना उनकी पूजा भक्ति के लिए। तो जब भगवान का समोषण यहां मौजूद था तब पूजा होती थी घंटे 2 घंटे और उनका प्रवचन होता था 7.25 घंटे, ये अनुपात था। अब पूजा में भक्ति में और भगवान की दिव्य ध्वनि खेलने में प्रवचन में फर्क क्या है चंदू जी, मालूम आपको, भगत बोले और भगवान सुने उसका नाम पूजा और भक्ति, और भगवान बोले और भगत सुने उसका नाम प्रवचन में दिव्य ध्वनि खेले। हम लोग तो भगवान की तरफ से बोलते हुए, हम तो अपनी तरफ से बोलते, पंडित हुकुमचंद थोड़ी बकता है, हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, मूल वक्ता तो वो है ना। हमारे पास ऐसा क्या है जो हम भगवान को सुनाएं? भगवान की बात सुनेंगे तो हमारा आत्मा का कल्याण होगा ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भक्तों का काल बढ़ता गया और भगवान का काल कम होता गया। वो उनका स्वाध्याय प्रोतन भक्ति सिकुड़ती गई और पूजा पाठ बढ़ता गया। अब जो 7-8 घंटे का हो गया और वो 8 घंटे का रह गया। क्यों रिपीट करने लायक तो ये है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ, आनंद का रसकन्न हूँ, शरीर परिणाम से प्राप्त द्रव्यन्द्रियों से पृथक हूँ, खंड खंड ज्ञान को करने वाली भावेन्द्रियों से भी पृथक हूँ। ये पाठ करने लायक, रिपीट करने लायक, 100 दफे बोलने लायक तो ये है। एक केसरिया चावलों में क्या रखा? रंगवा दो रंगवा दो रंगवा दो रंगवा हाँ रंगवा दो रंगवा रंगवा दो रंगवा रंगवा दो रंगवा दो नहीं खाते रंगा धोरा खाते इसकी तरह क्यों रंगवाता है? मैं बहुत प्रेम से बोलता हूँ, इतनी ये नहीं है, उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन हमको अनुपात का विचार तो करना ही पड़ेगा, है ना। अरे चिंतन मनन करोगे आप तो कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आपके स्वास्थ्य में सहायक होगा। चिंताएं कम होंगी, आत्मचिंतन चलेगा तो स्वास्थ्य में सहायक होगा और वो स्वास्थ्य में बाधक होता है। इसलिए मैं बहुत पवित्र हृदय से कहता हूँ, किसी को थोड़ा बुरा लगे तो मैं कल की बजाय आधे ही माफी मांग लेता हूँ कल दोबारा मांग लूंगा। लेकिन एक गंभीर बात है, इस बात का विचार करना कि क्या है धर्म का अंग वास्तविक और आत्मा का कल्याण कैसे होने वाला है, है? बाबू भाई बोलते थे मेरे से कि पंडित जी मेरे तो पुण्य के उदय से मुझे कोई बीमारी हुई है। कि क्यों? कि ना तो समाज मुझे छोड़ती और ना मैं समाज के आग्रह को टाल सकता था, तो मैं बस नाचता ही रहता और गाता रहता और पंडित कल्याण कराता रहता और धमाधम धमाधम और यहाँ और वहां और वहां वहां। मुझे आत्मा के बारे में ज्यादा सोचने का, स्वाध्याय करने का, चिंतन करने का समय ही नहीं मिलता। इस बीमारी की कृपा से लोगों ने भी छोड़ दिया, मेरा भी विकल्प टूट गया। अब 24 घंटा में ये सोचता हूँ ये 2-3 वर्ष मेरी जिंदगी के मेरे हैं और बाकी तो सब दूसरों के लिए थे। क्यों? क्या हमें भी इसी कीमत पर हम ऐसा करेंगे? उनके पुण्य के उदय से उन्हें ऐसी बीमारी हो गई थी और हमें नहीं भाई, तो और हम ऐसे चलते फिरते हंसते गाते ही, क्यों ना हंसते गाते ही मर गए तो क्या होगा? क्या गारंटी है? क्या बोलो, नहीं हो सकता है। इसलिए भाई हमको क्यों ऐसा, हमको बहुत गंभीर पैसे एक एक बात का विचार करना चाहिए। जो 60-70 हो गए हैं ना, उनसे तुम्हें बहुत इस बात को कहना चाहता हूँ गहराई से कि अभी तुमको क्या, तुम धंधे पानी से रिटायर्ड हो गए, घर से रिटायर्ड हो गए, बाल बच्चों से रिटायर्ड हो गए, उनके शादी विवाह कर दिए, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, अब काहे को झंझटों में फंसते हो? ठीक है, सहज भाव से जितना बने कर लो, निषेध नहीं है, लेकिन इतना इतना मत उलझो कि अपने आत्म कल्याण का कारण विघ्न हो जाए, जो कसाय का कारण बन जाए, इतना मत उलझो। करो, मंदिर की सेवा करो, पूजा करो, भक्ति करो, सब करो, बढ़िया काम करो। घर से छोड़ दिया है तो ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? लेकिन उसमें भी इतना तो मत रहो कि परम आप बबूला हो जाए और हमारे कसाय हो जाए और रात रात भर नींद नहीं आए सुबह चंदी बने, 2 साल बाद बने बरन, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इतनी आकुलता नहीं करना, इस कीमत पर नहीं करना। मैं सच बोलता हूँ, हमें से क्यों कहते हो, दूसरों से क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे मित्र हैं, इसलिए तुमसे कहते हैं। धर्म का काम करना नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमारे मंदिर को हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? इसी व्यवस्था हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलो आप बताओ। लेकिन इस कीमत पर कि जिस आत्म कल्याण के लिए, जिन कसायों को कम करने के लिए, जिस चित्त की शांति के लिए हमने ये सब किया है, वो चित्त भी अशांत हो जाए? इस कीमत पर नहीं करना। नहीं करूंगा पंडित जी तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होने दे। लेकिन ये कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। हमारे मनुष्य भव का एक एक क्षण बहुत कीमती है, उसके सामने 100-100 मंदिर निछावर किए जा सकते हैं। जब मैं ये बात कहता हूँ ना, तो मैं वो अच्छी बात कर सकता हूँ, सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। इसमें दंतमा शंका नहीं करना, काय की कीमत पर किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं पता नहीं है, और तुम किस चीज की कीमत पर क्या उपलब्ध कर रहे हो? ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं कर, ये डंडा यहाँ नहीं लगाना, ये लाइट वहां नहीं लगाना, और फिर इसमें इतना झगड़ा हो गया कि दोनों हाथ बबूला हो गए, अब इस कीमत पर यहाँ लाइट लग गई तो क्या बिगड़ गया, मैं लगती हूँ वहां लग जाती है बाबू क्या बिगड़ गया। चलिए साहब यही शोभा देती है, अरे शोभा थोड़ी कम होती, शोभा की कीमत तूने क्या चुकाई है। मेरे कहने का मतलब अपन तो बनिया है ना, तो हिसाब किताब भी समझना, कुछ मुनाफा और घाटे का भी विचार करना ना, कुछ क्या अकेला यही विचार करना कि बढ़िया अप टू डेट नहीं, अप टू डेट क्या है, तू मंदिर को बढ़िया बनाएगा, डाइनिंग टेबल बढ़िया बनाएगा, कमरा को सजाएगा, तेरा तीसरा तो बिगड़ता जा रहा है ना, इसका क्या करेगा, ये गाल लटकते जा रहे हैं, इसका क्या करेगा, सारा शौक उसमें निकाल ले, यहाँ का निकलता नहीं तो चला जाएगा ना एकदम। मैं नहीं करने की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन इस लेवल तक नहीं उलझना उसमें जो हमारे आत्मा के अकल्याण का कारण बन जाए, ये हर बात में समझ लेना। और तीसरा बोल है, भाविन जी का जीतना हो गया, दो तो याद हो गई कि नहीं हो गई, देविन जी को कैसे जीतना, कि तू एक जड़ है और भगवान आत्मा चैतन्य है, ऐसी भेदाभ्यास की भावना से जीतना। और भाविंद्रियों को खंड खंड है और अखंड, तू अंदर में अखंड है और वे ज्ञान को खंड खंड करती है, जो मेरे ज्ञान को खंड खंड कर दे वो मेरी नहीं है। इस बल से भावेंद्रियों को जीतना माने, भावेंद्रियों से मैं भिन्न हूँ, मैं गायक हूँ और भावेंद्री गे हैं, ऐसा जानना, बस इतना ही जीतना है, इससे ज्यादा और कोई जीतना फीतना नहीं है, कोई झगड़ा पकड़ने की बात नहीं है। अब तीसरा है, देखो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को कैसे जीतना, तो इनसे क्या संबंध है हमारा, मंगललाल जी साहब कि कोई संबंध नहीं है, ये हमारे ज्ञान का गे बन गए, बस इतनी सी तो बात है, ये हमें दिखाई दे रहे हैं और हमने इन्हें देखा है, इससे ज्यादा क्या संबंध है इनका। इसके लिए कवियों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, भूमि न हो तो चांदनी की जो क्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी, कि जैसे चंद्रमा की चांदनी जिस जमीन पर पड़ जाए बस जमीन चंद्रमा के बाप की हो जाती है क्या, ऐसे ही जिस पदार्थ को तूने जाना ज्ञान का गे बन गया तो तेरा हो गया क्या, जबरदस्ती चैनता है उससे क्या। भूमि न हो तो चांदनी की जो, चांदनी की भूमि जैसे नहीं हो पाती है तू नहीं हो तो धनी गे को ज्ञानी, गे को जानने वाला ज्ञानी उसका धनी माने मालिक नहीं बनता। तो क्या कहते हैं कि इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ ये तेरे इंद्री ज्ञान के गे ही तो बने हैं, और वो इंद्री ज्ञान जिसने इसे गे बनाया हमने उससे ही रिश्तेदारी तोड़ दी, तो तुम कौन खेत की मुनि हो, उसको ही हमने क्या लगा, ये है संग, इसने शब्द पढ़ा है संग, अभी पढ़ूंगा संग, संग माने परिग्रह, बोलते ना पर पदार्थों का संग, हमारे ज्ञान के गे बने तो संग हुआ। तो भगवान आत्मा का स्वभाव कैसा है, असंग, तो उन्हें कहना संग और अपने भगवान आत्मा के असंग स्वभाव के आश्रय से उनको जीतना माने उन्हें भिन्न जानना। मैं तो किसी का संग रखता ही नहीं, मैं तो किसी का साथ लेता ही नहीं, क्योंकि साथ लेने में चक्कर ही चक्कर है। मैं सुबह शाम घूमने जाता हूँ, 4 मील सुबह घूमता हूँ, 4 किलोमीटर 4 शाम, 10 मिनट में 1 किलोमीटर घूमता हूँ, तो मैं किसी का साथ नहीं लेता हूँ, किसी का नहीं, भाई साहब का भी नहीं, पत्नी का भी नहीं, वो 14 मिनट में 1 मिनट किलोमीटर घूमती है, मुझे 10 मिनट घूमना, साथ में कैसे मिले, कहते मेरी रफ्तार भंग हो जाए उसे दौड़ना पड़े, तू अपना अलग मैं अपना अलग, ये नहीं क्यों, अपन मैं अपना सोचता भी रहता हूँ, वो साथ में जाएगा वो माथा खाता कुछ कुछ ना कुछ करता ही है, अपनी रफ्तार को भंग करता है, दिमाग को खराब करता है, इसलिए जो मेरे साथ हो भी लेता है तो भी उसे 10 कदम आगे हो जाता हूँ, उसको निभाता नहीं हूँ मैं साथ घूमने में कभी भी सुबह शाम, देख बहुत लोग बताते हैं, मैं कहते देखो भाई जिसको चलना हो मेरे साथ जो चल सके वो आना, मैं उसकी वजह से रंच मात्र अपनी रफ्तार धीमी करने वाला नहीं हूँ, वो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, बीच में तुम्हें बोलना हो जितना बोलना, मैं हाँ करूंगा बस, तुम उसका अर्थ तुम्हारी बात का समर्थन कर रहा हूँ मत समझ लेना, तो बहुत साफ शब्दों में कह देता हूँ, क्योंकि ये साथ में घूमना शुरू करे तो घूम ही नहीं सकते, क्यों कि मैं पहले जग गया आप नहीं जगे तो आपको मैं जगाने जाऊं, तो आप निपटे 10 मिनट देर करें तो 10 मिनट लेट हो जाएंगे ना, और 3 आदमी साथ होंगे तो 15 मिनट, और 10 आदमी साथ रहे तो 1 घंटे ही पूरा खत्म हो जाएगा, घूमने का टाइम ही खत्म, घर ही रहो। होता क्या नहीं होता? अरे संघ में घूमना नहीं बनता है तो मोक्ष में जाना कैसे बनेगा? संघ में ले दौलत प्राण क्रिया को हम मुक्ति ना जाने पाएंगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े। ये बात है, देखो इसमें लिखा ना संघ, मैं पढ़ता हूँ अभी, देखो पहले ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की, ये तीसरा संबंध क्या है? ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाला संबंध है। ग्राह्य माने जिसे हम खरीदते हैं ना, और ग्राहक माने खरीदने वाला, आप तो व्यापारी समझते हो ना, ग्राहक माने जो माल खरीदता है, और ग्राही क्या है? दुकानदार नहीं, वो माल। आप कपड़ा खरीदने गए तो कपड़ा को बोलेंगे ग्राही, और आपने खरीदा तो आपको बोलेंगे ग्राहक। तो ये तो माल की बात है, लेकिन ज्ञान में, ज्ञान यदि ग्राहक है तो ग्राही क्या हुआ जी? तो चाहे ग्राहक संबंध कहो, चाहे ग्राही ग्राहक संबंध कहो, आत्मा पर पदार्थ को ग्रहण तो करता ही नहीं, तो क्या ग्रहण करता है? कि उसे जाना, यही ग्रहण करना है क्या? कि क्या ग्राह्य ग्राहक संबंध की निकटता के कारण क्या चक्कर होता है? कि हमने इसे जाना तो ज्ञान का गेय बना ना, तो एक निकटता हुई, दोनों एक क्षेत्रावगाह रूप निकट हुए ना, इस निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती हैं, कि संबंध तो सिर्फ इतना हुआ कि हमने उसे जाना, उसने हमें जाना, और ऐसा लगता है जी तो हमें ही हो गए, यानी एक दिखती, संवेदन के होने से एक दिखने लगती है। इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ क्या है? हमने उन्हें सिर्फ जाना है, लेकिन संबंध की निकटता के कारण हमें भी एक ही से लगने लगते हैं, जो जानने में आया वो, और जिसने जाना वो, हमें एक लगने लगते हैं। ग्रह ग्राहक संबंध की निकटता के कारण एक लगने लगते हैं। मैं इंदौर में रहता था, पर यहां से गया था ना सोनगर से, 1.5 साल इंदौर रहा, तो वहां पर मुख्य मंडल के अध्यक्ष ने जय लालचंद जी, उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है, तो हम स्कूल में पढ़ाते थे तो हम एक और मास्टर जी और हम उनके कपड़े की दुकान पर गए, और मैंने उनसे कपड़ा खरीदा और मैंने कहा लिख लेना, मैंने कहा ठीक है लिख लेना, तो वो मास्टर जी साथ में थे ना, उनने भी कपड़ा खरीद लिया और बोले लिख लो, तो वो बोले कि हम तो आपको जानते नहीं है, सही घटना है बिल्कुल, तो बोले पंडित जी जानते हैं मास्टर जी, तो मैंने बोले कि साहब आप जानते हो? कहा जानते हैं, हमारे स्कूल में मास्टर है, हमारे साथ पढ़ाते हैं, मैंने इतना कह दिया, उनने लिख लिया था। 6 महीने बाद तकादा आया कि पंडित जी वो आपके मास्टर जी के पैसे नहीं आए, देखा हमारे मास्टर जी के तुम्हारे मास्टर जी, नहीं 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 आपने आपके कहने से दिया था, मैंने कब कहा था? आपने पूछा था कि आपने जानते हैं, तो मैंने बता दिया था कि हाँ जानता हूँ, और ये भी बता दिया था कि हमारे साथ स्कूल में पढ़ाते हैं, ये जानता हूँ, फिर उनके पैसे नहीं आए, मैंने कहा ना अभी तक आए ना कभी आएंगे, ये भी जानता हूँ मैं। तो आपने उस दिन क्यों नहीं गई? एक धंधा तुम्हें करना है, कमाई तुम्हें करना है, और बुरे बुरा मैं बनता, मुझे तो उसके बाद 24 घंटा रहना है। तुम मेरे से ये कहते कि मैं आपके नाम लिख दूं, और फिर मैं कहता हाँ कोई चिंता की बात नहीं है मेरे नाम लिख दो, तुमने कोई जानते हो? मैंने बता दिया जानता हूँ, क्या जानते हैं हमारे साथ पढ़ते हो, इतना सा संबंध है, अब तुम इतनी सी निकटता को देख के क्यों जानने का क्या मतलब होता है? जाना तो ये भी जाता है कि जो ईमानदार है, और ये भी जाना जाता है कि ये बेईमान है, दोनों को जानना ही तो कहते हैं, तुमने क्या कहता कि मैं नहीं जानता हूं, समझ गया ना? तो ये जानने का संबंध इतना निकट का नहीं है जितना तुम समझते हो भाई साहब, और हमने बस जाना, ग्राहक ग्राहक लक्षण संबंध हुआ वो जाना, और हम तो ऐसे हो जम गए, क्यों हम अकेले जानने के भरोसे कहीं जमने को पहुंच जाए ना, तो बोलो क्या बुलावा जी आप जानते हो नरसिंह राव को? जानते कि नहीं जानते? नहीं जानते, नहीं जानते कोमल सिंह, आपने प्रधानमंत्री है ना, उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं जानते हैं? हाँ जानते हैं साहब, आपने उन्हें देखा है? हाँ दो जाना देखते हैं टीवी पे, तो हमारा एक काम करा देने, काम करा देने का क्या मतलब है? हम जानते हैं, जानने की बात कही है, जानने से काम का क्या लेना देना है। और हम उनको जानते हैं, वे थोड़े हमें जानते हैं, समझ गए ना। तो ऐसे ही तुमने इस घड़ी को जाना, घड़ी ने थोड़ी तुम्हें जाना। तुमने स्पीकर को जाना, स्पीकर ने थोड़ी तुम्हें जाना। तुमने इस खंभे को जाना, खंभे ने थोड़ी तुम्हें जाना। क्यों हम खंभे से कैसे काम करा दे, अरे हम इन्हें जानते हैं, खंभे को अच्छी तरह से। तुम गिरना तो जरा इनके माथे पर मत गिरना, खंभा हमारी बात मानेगा। वो हमें तो नहीं जानता है ना, हमारे जानने से क्या होता है। एक बैल आया बहुत जल्द मारने के लिए, तो बकरी घबराओ मत, यदि तुम्हें मारेगा ना तो मैं इस पर क्या मैं 302 का केस कर दूंगा। कि नहीं मैं तो भागूंगा, क्यों, क्योंकि ये धारा तुम जानते हो, वो तो नहीं जानता, जो उसमें 302 लग जाएगा वो तो लगा ही दोगा, जो कुछ होगा सो होगा। क्यों जो धारा तुम लगाते रहोगे, जो कुछ होगा तो होता जाएगा। वो तो वकील नहीं है ना, जिनके पास सिंह है वो वकील नहीं है। तो हम गे को जानते हैं, तो गे तो हमें नहीं जानता है, तो एक तरफा की संबंध होता है भाई साहब। हम बड़े साथ से कहते हैं कि वो मैंने अपना मकान 5 लाख में निकाल दिया। सच्ची बात है, तुमने मकान को निकाला है कि मकान ने तुम्हें निकाला है? मकान तो अपनी जगह है, निकले तो तुम अपना सामान बटोर बटार गए। लेकिन हमको आदत बड़ी है सम्राट बनने की, कि मैंने ऐसे निकाल दिया, मैंने उसे निकाल दिया। अरे गे व्यायक संबंध भाई साहब कोई संबंध ही नहीं है, ये तो कहने का संबंध है। अकेला जानना कोई संबंध है? और ऐसा वो मूर्ख जगत है कि जिसको जानता है उसको ही अपना मान लेता है। जहां मिली दो वही है सो, ये भी बात हुई। जान जाता है जिनकी जान पहचान हुई, फिर उसे वो अपना मान लेता है। तो आचार्य कहते हैं गे ग्राहक संबंध की, इसमें ग्राह ग्राहक लक्षण संबंध की अति निकटता के कारण। एक ही क्षेत्र में दोनों है ना, भाग्य से अति निकटता है, चलो दो और आत्मा एक एक क्षेत्र में है, लेकिन संबंध क्या है इनका, गे ग्राहक है। हमारे एक ज्ञान के गे बन रहे हैं, हम इन्हें जान रहे हैं, संबंध तो इतना है, लेकिन हमने इसे अपना मान लिया जबरदस्ती। देखो लिखा क्या लिखा, ग्राह ग्राहक वाले लक्षण संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी होती दिखाई देती हैं, ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा। क्या चैतन्य शक्ति का स्वभाव कैसा है? असंग है, तो किसी को जाने लेकिन किसी का संग करती ही नहीं है। वो जाने और नहीं जाने जैसा होता है। तो आपको अटपटा लगेगा, लेकिन समझाने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कि देखो मैं कहीं बैठा हूं और वहां पर पास लेकर के लोग भोजन के लिए जाते हैं, और आपने देखा कि ये पंडित जी सबसे बड़े अधिकारी हैं और ये यहां बैठे हैं, मेरी तो ये पहचान के, तो मेरे को तो पास की क्या जरूरत है, समझे ना। तो आप आए बड़े भट्टार से बराबर बराबर जाने लग गए, तो भोजन टोक दिया टोकने वाले के, पास लाओ। अभी मैं भी देख रहा था, अब आपने अब बोलेंगे पंडित जी, अब बोलेंगे मैं चुप। आपको उसने उठा दिया, तो आप कहेंगे साहब गजब हो गया, मैं तो उनको ऐसे समझता था, ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा कि पंडित जी मैं डॉक्टर बाबूलाल हूँ, आपके सामने रहता था। अच्छा अच्छा ठीक है मैं जानता हूँ तो मैं जाऊं। क्या साहब वो तो ऐसा हो गया जैसे हमें जानते ही नहीं हो, क्यों आगे सुने। तो हम क्या समझते हैं, जानने का संबंध इतना होना चाहिए कि मैं चाहे जो कदूँ चाहे जहां करूं, समझे ना। मेरा दादा मुख्यमंत्री क्या हो गया है, और तो सारा हिंदुस्तान भी फ्रांस भी मेरा हो गया है, समझ में आया कि नहीं। यानी तुमने जानने, अरे सर्वज्ञ भगवान तुमको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और जहां जो विराजे सिद्धिस्वा में चले जाओ तो वे तुम्हें आने देंगे, क्यों करेंगे तुम्हारी कोई हेल्प, तो उसको हम कहते हैं कि हमारी तो इतनी घनी जान पहचान थी, लेकिन उनने तो ऐसा व्यवहार किया जैसे हमें जानते ही नहीं हो। यानी हम या तो अपना काम करा, संबंध कायम रखे, और नहीं तो हम गेय गायक संबंधी नहीं मानेंगे। तो तुम वास्तव में गेय गायक संबंध के बहाने कोई दूसरा संबंध स्थापित करना चाहते हो। अभिप्राय दूसरे है ना, तो लड़का दो अलग अलग आपने बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी कह रहे चला, और अंदर में खोटा भाव हो तो क्या बात करूँ? शर्म नहीं आती महिलाओं के बीच इधर उधर पर होना? वो तो मेरी बहन है, वो तो मेरी बहन है। मैं दादा गैवर की तो पता ही लगेगी। तू तो बहन और भाई के पवित्र संबंध को इतना ना जाए अपवित्र कर रहा है, फिर तो बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कहते हैं एक गे गायक संबंध के बहाने तू न मालूम उससे क्या संग करना चाहता है। और भगवान आत्मा का स्वभाव तो असंग गायक है, जानने का है, और कोई उसके आगे का उसका स्वभाव है ही नहीं। उदार साहब आपने कुछ नहीं बोला कि क्यों? तो बोला था, मैंने कहा था आप मुझे जानते हैं, तो मैंने भी कह दिया था कि हाँ जानता हूं ना। आपने कुछ क्या करना था? जानता हूं जानता हूं। तो आप जैसे लोग मैं आपको जानते ही नहीं हूं, लेकिन मैं कब कहता हूं नहीं जानता था। लेकिन वो जानने का अर्थ इससे और अलग करता है, और नाम लेता है अकेले जानने का, नाम करता है जानने का, और चाहता है उससे कुछ अधिक और। क्यों ये बात है ना कोमलचंद जी? इसलिए कहते हैं वो ज्ञान स्वभाव जो है आत्मा का वो असंग स्वभाव है। असंग स्वभाव का मतलब वो किसी का संग निभाता ही नहीं है, वो निभाए वो ज्ञान नहीं, जो किसी का साथ निभाए उसका नाम तो राग है भाई साहब, उसका नाम ज्ञान नहीं है। उसका नाम क्या है? राग है, ज्ञान नहीं है उसका स्वभाव। भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव तो असंग है, तो आत्मा का असंग स्वभाव के माध्यम से तू गेयों से अपने को पृथक जानना। तीन तरकीबें हो गई, तीन चीजें थी। देवेंद्रियों को जीतने का कारण क्या था? आत्मा का चैतन्य स्वभाव। भावेंद्रियों को जीतने का उपाय क्या था? आत्मा का अखंड स्वभाव, अखंड चैतन्य स्वभाव। और इंद्रियों के गेयों से जीतने का उपाय क्या है? असंग स्वभाव। इन तीन स्वभाव के माध्यम से ये जान कि मेरा इस जगत से कोई भी संबंध नहीं है, इस जानना, बस जानना, इतना जानना, इसका नाम इंद्रियों को जीतना है। और उसे जितेंद्रिय जिन कहते हैं, और उसने ही गे गायक शंकर दोष का परिहार किया। कैसे किया? क्योंकि गे माने इंद्रिया, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, दे जुदे और मैं जुदा, ऐसा जाना तो गे गायक की मिलावट खत्म हो गई। और ये भगवान के नंबर एक के भगत हैं। बोलो पंडित जी बाबूलाल जी, ये नंबर एक के भगत ये हैं, और इसके अलावा कोई भगतों में भगवान की गिनती नहीं है। तुमने कितनी करी तुम जानो, लेकिन तुम्हारा नाम वहां दर्ज नहीं है। तो व्यवहार तो है कि नहीं है? व्यवहार भक्ति तो है कि नहीं है? नहीं है। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। अष्टपहर में लिखा, उनको शतक में लिखा ना, बोल याद है व्यवहार भक्ति का स्वरूप क्या है? वो है ना, एक सेकंड में बताता हूँ। वो है ना, सिद्ध गाते हैं कुंदकुन शतक की, अच्छा 98वीं गाथा, भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। ऊपर की पंक्ति बताओ, अब बताता हूं मैंने सिद्ध मुक्तिगत। हाँ, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। ये व्यवहार से भक्ति तो है, क्यों? किसकी? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की। बिल्कुल प्राकृत भाषा में है, मुक्ति गयम नये सेठम, ऐसा शब्द है, मुक्ति गयम पुरी पुरुषाणम, मुक्ति गए हुए पुरुषों की, मैंने अकेले सिद्ध भगवान की। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे कैसे? गुण भेद से, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है। ये गुण भेद किया तो एक व्यवहार से भक्ति है। तो जिन सूत्र में इसको परम भक्ति कहा है लेकिन व्यवहार में ऐसे, तो निश्चय में ऐसे परम भक्ति कौन है कि वो सिद्ध भगवान जुदे हैं और मैं जुदा हूँ, वे मेरे गे हैं और मैं उनका गायक हूँ, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनका मेरा अपनापन नहीं है, मैं उन पर उपयोग भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उपयोग लगाऊंगा तो वे मेरे ज्ञान के गे बनेंगे तो राग की उत्पत्ति होगी, वितरागता की उत्पत्ति होने वाली नहीं है, मैं तो अपने में ही जाता हूँ। इसका नाम है निश्चय भक्ति। ये जानना एक पहले नंबर की निश्चय भक्ति और जाना एक दूसरे नंबर की निश्चय भक्ति और फिर उसके बाहर कभी नहीं निकलना उसे तीसरे नंबर की निश्चय भक्ति। बहुत संक्षेप में मैंने कहा है, याद रहेगा। अरे बाबू क्या, ये जानना है पहले नंबर की और इसमें जानते ही रहना दूसरे नंबर की और फिर उसके जानते ही रहना, कभी बाहर आना ही नहीं अनंत काल तक, भावे भावक भाव का अभाव हो जा करके, क्यों तो तीसरे नंबर की और उसके बाद क्या, अब तो तुम भगवान बन गए, अब भगत कहाँ रहे। चौथे से बारहवें गुणस्थान तक निश्चय भक्ति होती है और तेरहवें गुणस्थान में तो भक्ति का फल आ गया, ऐसा लिखा उनने, उस भक्ति का फल आ गया, तो भक्ति नहीं कही, भक्ति का फल आ गया। बोलो ये तीन तरह की भक्ति है, निश्चय भक्ति और व्यवहार कौन सी हुई, मुक्तिगत गुण, मुक्तिगत नरश्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। ये कुंद कुंद की मूल गाथा का है, कुंद कुंद शतक में 98वीं गाथा है, उसमें देख लेने लिखा हुआ है अष्ट पावर की कौन सी गाथा है, मोक्ष पावर की ऐसी गाथा है। तो व्यवहार है और बाकी का सब, ये हमारा दो घंटे का भक्ति का कार्यक्रम होता है, वो क्या करें, ये सब शास्त्र की बात है, ये सब भक्ति का प्रकरण चल रहा है। ये भक्ति, ये जानना इसने कि भगवान की कहा भाई, ये तुम्हारी भाई ना, कि भैया भगवान ने यही बताया है, ये मानना है उनकी भक्ति है कि उनकी आज्ञा नहीं मानना ये भक्ति है, बोलो ए? भगवान की तरफ हम आंख फाड़ फाड़ के देखते थे तो भगवान ने कहा कि मेरी तरफ क्या देखता है, देखने वालों को क्यों नहीं देखता, भगवान बनना है कि हाँ साहब भगवान बनना है, तो मुझे क्यों देखता है, तो देखने वाला तेरा भगवान आत्मा को तू देख तो तू भगवान बन जाएगा। बोलो भगवान की आज्ञा है और जिस अन्य ये आज्ञा मानी वो भगवान का नंबर एक का भगत है कि नहीं है, तो सोच लेना अच्छी तरीके से। गुरुदेव की तो भक्ति तो करनी चाहिए ना, यहाँ जरूर करना चाहिए, लेकिन जब तुम अपने आत्मा में जाए तब नहीं करना चाहिए। देखो आप जब साल भर तक क्लास में पढ़ते हो तो गुरुजी क्लास में आए तो खड़े होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, नहीं हो तो नालायक है। सिर्फ अब तुम परीक्षा देने बैठे हो और गुरुजी निरीक्षक है, क्यों अब गुरुजी चक्कर काट रहे खड़े खड़े और तुम कुर्सी पे बैठे देते, अब गुरुजी तुम्हारे पास आए तुम खड़े हो जाओ, बोलो गुरुजी नाराज होंगे खुश, चुपचाप अपना काम कर, कहता आप खड़े हो मैं कैसे बैठे रह सकता हूँ, क्यों गुरुजी एक गिलास पानी दौड़े दौड़े गुरुजी लाए तुम्हें पिलाए, क्यों अब घर में तुम आओ गुरुजी पानी तुम्हें पिलाए तो तुम जैसा नालायक नहीं, क्यों और वहां तुम खुद पानी पीने जाओ और गुरुजी को एक गिलास आप भी पियो गुरुजी तो तुम जैसा कोई नालायक नहीं, वहां तुम तो बैठे बैठे लिखो, गर्दन भी ऊंचे को उठाओ मत, खड़े मत हो और पानी भी गुरुजी से मंगा के पीना हो तो पियो, तो तुम गुरुदेव तुमसे शिष्य होंगे, सच्चा भगत में मानेंगे, अच्छा मेरा असली विद्यार्थी तो ये है जो मेरा नाम कमाएगा देश विदेश में, ये चापलूसी करने वाला मेरा काम नाम कमाने वाला नहीं है। तो बोलो भगवान का असली भगत कौन है, दुनिया में नाम कौन करेगा, भगवान का नाम दुनिया में कौन करेगा, क्यों ये ध्यान में धीरे वाले ये नाचने वाले कौन करेंगे, ध्यान में धीरे आ गए तो वो पूजा का बोल भी ख्याल में नहीं आता, समझे क्या जरूरत है, कि तुम जिंदा चमड़े हो ना तो मेरे चमड़े को ठोकने की क्या जरूरत है, साथ में सीधा बोलो ना भगवान की भक्ति का उसमें क्या जरूरत है, सबकी समझ में एक एक अक्षर आवे, जो तुम बोल रहे हो ना वो ख्याल में तो आवे, वो धमाधम में सब निकल जाता है, आधा पता ही नहीं चलता है तो क्या बोल रहे, अब उसमें कोई बोलने लायक कोई सुनने लायक होता ही नहीं है, अभी क्या सोचे उसमें, केसरिया चावल रंगवा दो कसर थी इसमें तो गुरु जी क्या सोचे। अरे कोई भगवान की पूजा भक्ति निकला पूजा की भी पंक्ति आए ना तो सोचने को तो मिले। नेव इंद्रिय बलकार सो तुमने चूरा चरु तुम्हें ढिंग सो है सार अचरज है पूरा। बताओ क्या अर्थ है इसका, सोचा कभी कि नेवज इंद्रिय बलकार, नेवज माने लड्डू, इंद्रिय बलकार खाओगे तो शरीर पुष्ट हो जाएगा। क्यों गजलाजी वर्धन के पिताजी थे फिर बहुत प्रेम रखते थे तो सर्दियों में लाके लड्डू बना बना के लाते थे ना मैंने कहा डॉक्टर एक खाओ पंडित जी मोटे अच्छे हो जाओगे। हम तो कभी मोटे पाजी भाई नहीं तो लड्डू खाए नेवज इंद्रिय बलकार। नेवज इंद्रिय बलकार का क्या अर्थ है, सो तुमने चूरा तो भगवान तुमने क्या वो चूर दिया लड्डू को चूरमा बना दिया होगा। और चरु तुम्हें नहीं सोया सार ये कौन सी चरु उनके पास मौजूद है और अचरज है पूरा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैं पूछता हूँ इस छंद को पढ़ते हुए किसी को कभी आश्चर्य हुआ कभी चंदादा तो छंद में तो लिखा है कि अचरज है पूरा, मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा है। तो इस छंद को पढ़ते वक्त ऐसी बात हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो कोई आश्चर्य की बात हो निकलना चाहिए ना। तो फिर क्या है देखो, नेवज इंद्रिय बलकार, नेवज माने लड्डू फड्डू नहीं, नेवज माने भोग का भाव। तो ये इंद्रिय बलकार माने क्या कि जब मन में भोग का भाव आता है तो इंद्रियां लपलपाने लगती हैं, खाने की इच्छा होती है तो जवान गीली हो जाती कि नहीं, इंद्रिय को बल देती कि नहीं, ऐसे स्पर्शन इंद्रिय ग्रहण इंद्रिय सब पर लगाना। तो जब भोग का भाव नहीं हो तो पांच इंद्रियां ठंडी पड़ी रहती है और जब भोग का भाव आता है तो ये पांचों इंद्रियां एकदम सक्रिय हो जाती हैं। तो नेवज माने भोग का भाव, ये भाव इंद्रिय और ये द्रव्य इंद्रिय को बल देने वाली है। हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर रहते हैं, इंद्रियां तो उनकी भी हमारी तुम्हारी जैसी हैं लेकिन उनके अंदर भोग का भाव नहीं है तो द्रव्य इंद्रियां हो नहीं होने की एक सी है कि नहीं। तो नेवज इंद्रिय बलकार का मतलब समझो ना, ये भोगने का जो भाव है वो द्रव्य इंद्रियों में बल पैदा करता है। सो तुमने चूरा, हे अनंत भगवान तुमने उसका नाश कर दिया। इसलिए वज्र सब नाराज सनन की इतनी मजबूत द्रव्य इंद्रियां हैं तो भी उनमें कोई बल नहीं है, वो तुमसे हार गई, वो तुमसे हार गई, वो तुम जीत गए। जितेंद्री जिनकी बात चल रही ना, गाथा जितेंद्री जिनकी है कि नहीं, अब समझ रहे। नेवज इंद्रिय बल का, नेवज माने भोग का भाव, इंद्रिय माने द्रव्य इंद्रिय भाव, नेवज माने भाव इंद्रिय और इंद्रिय माने द्रव्य इंद्रिय में बल पैदा करते हैं। सो तुमने चूरा, तुमने वो भाव इंद्रिय का नाश कर दिया है। न थोक सम ज्ञान तुम्हारा रहा और न राग भाव रहा, तो तुम तो केवल ज्ञानी हो गए ना वितरागी। तो तुमने भोग का भाव और छोर संज्ञान ये भाव इंद्रिय का अभाव कर दिया है, ठीक है ना। चूरा निकल गया ना चूरन। अब चरु तुम ढंग सो ऐसा, नेवज और चरु ये दोनों ही नैवेद्य के नाम है, ये तो आप जानते होंगे नहीं, चरु भी बोलते ना उसको। तो कहते चरु तुम ढंग सो ऐसा, नेवज तो तुमने हटा दिया तो चरु तुम्हारे पास मौजूद है। तो ये आश्चर्य की बात है ना, नेवज मौजूद है, क्या मौजूद है, तो नेवज चला गया तो चरु कहाँ से मौजूद है। तो चरु जानते किसे बोलते हैं आप, चरु माने दिव्य ध्वनि। तो तुम अपने मन से ताजे कुछ वर्ष करते जाओ तो हम मान लेंगे कौन सी डिक्शनरी में लिखा है। देखो चरु आप समझते हो, ये जो जंगल में गायें जो चरने जाती हैं उसका गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है उसका नाम चरु है कि नहीं। चराई 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 को चरु बोलते कि नहीं चलते। तो चरु शब्द पूरा शब्द है गो चरु, मैंने गाय भैंस के चरने की जगह गोचर भूमि बोलते क्या नहीं, तो जमीन का नाम गोचर भूमि है ना। तो गो चरु, तो गो माने गाय भी होता है और गो माने वाणी भी होती है, दिव्य ध्वनि भी होती है, 11 अर्थ होते हैं गो शब्द के देख लेना नाम माला में। तो गो चरु माने दिव्य ध्वनि, यानी तुम्हें बोलने का भाव तो है नहीं और तुम्हारी दिव्य ध्वनि खिल रही, बड़े आश्चर्य की बात है। क्योंकि दुनिया के जीवों के बोलने के भाव के बिना बोलना होता नहीं, लेकिन तुम्हारा बोलने के भाव के बिना बोलना होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, हो गया ना। नेवज इंद्रिय बल कार सो तुमने चूरा, करु तुम ढिंग सो है सार अचरज है पूरा। है ना आश्चर्य की बात, कितना गंभीर और गहरा भाव है। तारा तुम्हें ध्यान में जीरा में निकल जाता है, सोचने की फुर्सत नहीं मिलती है कि उसमें क्या आ रहा है, क्या कह रहे हैं, हम मुंह से निकल रहा है तो क्या निकल रहा है, क्या भाव है। ऐसा विचार तो करना चाहिए ना उन शब्दों से। अदालत में कोई वकील कहे तो तुम जाकर कह देना मजिस्ट्रेट के सामने कि मैंने हत्या की है, तो कह दोगे? मैं नहीं कहूंगा, मैं मर जाऊंगा, फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा। क्यों? तुम जानते हो फांसी पे चढ़ोगे। यहाँ तो कवि ने जो लिख दिया हम बिना उसका अर्थ समझे भगवान से कहने को तैयार है, लेकिन उसका क्या अर्थ है सोच तो ले। हमने थोड़ी लिखा, लेकिन दूसरे ने लिखा, लेकिन इकबाल यह बयान तो तू दे रहा है, तू अपनी तरफ से कह रहा है कि उसकी तरफ से, तो उसका क्या अर्थ है तुझे समझना चाहिए कि नहीं, कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा ऐसा काम क्यों करते हो आप, कि क्या दूसरे माँ की बहन को क्यों छेड़ते हो, क्या बात करते हो, मैंने कब छेड़ी? भाई तुम ही कह रहे थे, भगवान से मैंने सुना है।